पृष्ठ संख्या 177। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा तथा साहित्य। जापान के लोग पढ़ने लिखने के शौकीन थे। बड़े बड़े समाचार पत्र लाखों की संख्या में पढ़े जाते थे। समाचार पत्रों के दो प्रमुख वर्ग अशाही और माइनीची थे। राष्ट्र के संकट काल को छोड़कर बाकी समय पुलिस की ओर से विशेष सेंसर नहीं किया जाता था। जब विशेष रूप से 1931 के आरंभ में युद्ध की घटनाएं अधिक घनी होकर घिर आई तो समाचारों के प्रकाशन पर नियंत्रण अधिक दृढ़ हो गया और ऐसे समाचार पत्र जिनका झुकाव लोकप्रिय तथा सनसनीखेज खबर देने की ओर था, राज्य सरकार तथा उसकी विदेश नीति का समर्थन करने लगे। युद्धकाल में तथा 1930 से 1940 में जब जापान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तनावपूर्ण वातावरण में से गुजर रहा था, दोमेई समाचार पत्र एजेंसी ऐसी खबरें और सूचनाएं देती थी जिनका सरकार स्वयं प्रसार करना चाहती थी। रेडियो का प्रचलन हुआ जो शीघ्र ही अत्यंत लोकप्रिय और लगभग सर्वसुलभ हो गया, लेकिन 1937 के अंत में लगभग केवल 1/4 परिवारों के पास ही रेडियो सेट थे। केंद्र स्थित बस्तियों में ध्वनि विस्तारकों की सहायता से प्रसारण को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया गया। 1937 के बाद के संकट काल में सरकार के पास रेडियो एक ऐसा सशक्त साधन था जिनके द्वारा वह जनसाधारण की राय को अपने अनुकूल ढाल सकती थी। जापान में इसी समय सिनेमा को भी लोकप्रियता प्राप्त हुई। वर्षों तक अमेरिका तथा यूरोप से फिल्मों का आयात होता रहा और अन्य देशों की तरह जापान में भी इन फिल्मों ने जनसाधारण के सामने पश्चिम का बहुत ही विकृत रूप पेश किया। अब जापान में भी फिल्मों का निर्माण होने लगा तथा बाहर से फिल्मों के आयात पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया गया। समाचार पत्र, रेडियो तथा फिल्म तो वहाँ के जनसाधारण को सुलभ थे ही, इनके अलावा अनेक पत्रिकाएँ भी निकलती थीं जिनमें से कुछ अत्यधिक उच्च बौद्धिक स्तर की थी। वर्षों तक विदेशी पुस्तकों के अनुवाद का कार्य बहुत तेजी से किया जाता रहा। यह निश्चित था कि पश्चिम की कोई भी बहुचर्चित पुस्तक, विशेषकर जिसमें कुछ ठोस चीज हो, कुछ समय के भीतर जापानी परिधान में सामने आ जाती। जापान के लोग शेष विश्व की विचारधारा के साथ साथ चल रहे थे। जीवन के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन। सन 1894 के बाद की 5 दशाब्दियों में विभिन्न तरीकों से जापानी जीवन के अनेक बाह्य पहलुओं में परिवर्तन होता रहा। जब तक युद्ध के फलस्वरूप पेट्रोल के उपयोग पर प्रतिबंध के कारण कुछ बाधाएं उपस्थित न हो गई, मोटर गाड़ियों के उपयोग में विशेषतः नगरों में क्रमशः वृद्धि ही हुई। मोटर बसों का आम प्रचलन हो गया था और पेट्रोल के बदले कोयले तथा अन्य प्रकार के ईंधन के प्रयोग की आवश्यकता पड़ने पर भी इनका प्रचलन जारी रहा। जापान में पश्चिमी खेलों की लोकप्रियता बढ़ी। बेसबॉल वहां का राष्ट्रीय खेल हो गया और इसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में दर्शक जमा होते थे। अनेक वर्षों तक जापान की बेसबॉल की टीमें अमरीकी टीमों के साथ खेलने के लिए अमरीका के दौरे पर जाती थी। जापान के टेनिस के चैंपियन पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतिस्पर्धा में भी भाग लेते थे। जापान में रग्बी, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, स्कीइंग, स्केटिंग, बॉक्सिंग तथा अन्य मैदान पर खेले जाने वाले खेलों के शौकीन की कमी न थी। जापान ने ओलंपिक खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्होंने तैराकी में अनेक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जापान में श्रमिक संघों का आविर्भाव हो गया था, लेकिन उनके संगठन को सरकारी तौर पर निरुत्साहित किया जाता था। सन 1914 के बाद कुछ समय तक उनके संघों और सदस्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कुछ समय तक तो रूस की तरह के साम्यवाद के विचारकों और समर्थकों की वहां कमी न थी, लेकिन 1930 से 40 में सरकारी क्षेत्र में साम्यवाद विरोधी लहर तीव्र हो गई और इसे भी एक खतरनाक विचारधारा घोषित कर दिया गया। कारखानों में स्त्रियों और लड़कियों को बहुत बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। अक्सर निर्दय तथा लापरवाह मिल मालिक उनसे आवश्यकता से अधिक काम लेते थे। उन्हें बहुत कम मजदूरी पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने के लिए बाधित किया जाता था, और जिन हालात में उन्हें रहना पड़ता था वे राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए एक कलंक थे। श्रमिक वर्ग के हितों को सुरक्षित करने के लिए विधान का निर्माण किया गया। कुछ वर्ष तक जापान अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का सदस्य रहा और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की अवस्था को सुधारने के लिए इसने सम्मेलन की अनेक उपसंधियों का अनुसमर्थन किया। जापान में चिरकाल से गणिका वृत्ति का प्रचलन था, और पश्चिमी देशों के समान यहाँ भी आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के साथ इसमें वृद्धि हुई थी। गीशाओ यानी पेशेवर नर्तकियों का युग बीत रहा था, जिसका मुख्य कारण संभवतः यह था कि इनका उपयोग केवल धनवान लोग ही कर सकते थे। इनके स्थान पर पश्चिमी नमूने के कॉफी हाउसों और नाच घरों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा था। ये स्थल निश्चय ही गीशा की अपेक्षा कम खर्चीले थे। स्त्री पुरुषों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आरंभ हो गया था। कुछ समय तक तो नारी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति जोड़ों पर रही। इसी समय कुछ महिला संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना था। साथ ही स्त्रियों को भी मतदान के अधिकार देने की मांग की गई थी। लेकिन तेजी से विकसित होते हुए नगरों में होने वाले इन परिवर्तनों के बावजूद भी, जो किसी भी पश्चिमी दर्शक को अस्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे, जापान के जीवन के आधारभूत ढांचे में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। परिवार का समाज की आधारभूत संस्था के रूप में अस्तित्व बना रहा। अपने सदस्यों की चिंता करना इसका कर्तव्य था और उन पर इसका नियंत्रण रहता था। परिवारों में स्त्री जाति की परंपरागत स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही जैसी पीढ़ियों से चली आ रही थी। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदस्य परिवार के समक्ष गौण था। सन 1894 के बाद कई प्रकार के जापानियों से जीवन का स्वरूप उत्तरोत्तर बदलता गया। जनसंख्या में वृद्धि हुई और उसके साथ साथ औद्योगिकीकरण में प्रगति हुई। शहरों का बहुत तेजी से निर्माण हुआ तथा पाश्चात्य सभ्यता की महत्वपूर्ण देन यांत्रिक साज सामान का अधिकाधिक प्रचलन हुआ। जनसंख्या में हुई वृद्धि ने इन परिवर्तनों की गति को और अधिक तीव्र कर दिया। 1930 से 35 के आसपास राष्ट्रीय जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों पर बल दिया गया। निकटवर्ती महाद्वीप पर साम्राज्यवादी अभियान, पश्चिमी देशों के प्रभाव को ग्रहण करने की अनिच्छा, पश्चिमी देशों में समग्रवाद का उदय, पश्चिमी देशों द्वारा जापान तथा जापानियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण पैदा हुई उत्तेजना, चीन में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना तथा जापान विरोधी आंदोलन आदि के फलस्वरूप जापान के उदार विचारों में कमी आ गई। सशस्त्र सेना में अतिवादी तत्वों का प्रभुत्व हुआ, अति राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ तथा पाश्चात्य वस्तुओं के प्रति एक प्रकार के विद्रोह की भावना ने जन्म लिया।